नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू प्रशांत, सुनने वालों को भी नमस्कार।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान और गुजरात का मुकाबला जारी, दिल्ली ने मुंबई को 6 विकेट से हराया। श्याम सुंदर स्वामी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में कांस्य पदक अपने नाम किया। हॉकी इंडिया पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कल गोवा, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश ने अपने अपने मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक ने जीते सर्वाधिक 23 स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की। सीधे लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां पर आईपीएल का मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में आईपीएल T20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 1 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी की आज फिर से वैभव ने और ध्रुव भी अच्छा कर रहे हैं और यशस्वी भी 55 रन बनाकर खेल रहे हैं।
जी हाँ, एक जो ड्रीम ओपनिंग जैसे हम कह सकते हैं कि टीम को मिलनी चाहिए थी, जिसकी उम्मीद कर रहे होंगे टॉस जीतने के बाद, क्योंकि राशिद आज कैप्टनशिप कर रहे हैं गुजरात की टीम की, वहां पर शुभमन गिल नहीं है, तो दोनों कप्तानों की उम्मीद के मुताबिक ही फैसला आया था। अरयान पराग ने टॉस जीता, उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जब राशिद से बात की गई थी तो उन्होंने भी कहा था कि हम बोल करना चाह रहे थे, लेकिन अभी जो परिस्थितियां लग रही हैं, इनफैक्ट अगर वैभव सूर्यवंशी, जिनको राशिद ने आते ही अपने पहले ही ओवर में आउट करा दिया, अगर वो बल्लेबाजी इस समय कर रहे होते, कंटिन्यू कर रहे होते, तो शायद ये जो 126 है इसमें बाद की जो दो संख्याएं शायद 126 से 162 हो गया होता, जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही थी। तो राशिद की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और अभी शायद तीसरा ओवर जब चल रहा था सिर्फ 23 रन उन्होंने दिए थे और ध्रुव जरूर अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जो विस्फोटक बल्लेबाजी का एक जो एक्यूमेन वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी के पास है, वो एक अनमैच्ड टैलेंट है इन दोनों खिलाड़ियों के पास। अब यहां पर आप देखें कि ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी कर रहे हैं और रयान पराग आएंगे, उसके बाद शेमरॉन हेटमेयर, और ये जो गुजरात का जो मैदान है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये ओवर बाउंड्रीज हिटिंग के लिए जाना जाता है। पिछले सीजन में यहां पर तमाम ओवर बाउंड्रीज लगाई गई हैं और इस समय बल्लेबाज जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, अभी तो खैर सिर्फ 5 ही छक्के आए हैं पारी में, तो जैसे मैं कह रहा हूं वैभव सूर्यवंशी चांस की बात है कि आउट हो गए, अन्यथा परिस्थितियां शायद और बेहतर हो सकती थी राजस्थान के लिए।
जी, और अभी अभी यशस्वी जायसवाल का भी विकेट गिरा है और कप्तान रियान पराग क्रीज पर आ गए हैं और इसके बाद भी सिमरन हेटमायर, फेरेरा और रविंद्र जडेजा जैसे बल्लेबाज आने को है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने आज मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 6 विकेट पर 162 रन बनाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 51 रन की पारी खेली। वहीं 163 रन के लक्ष्य को दिल्ली कैपिटल्स ने 11 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। समीर रिजवी को 90 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है समीर रिजवी का, पहले चेन्नई सुपर किंग्स में थे, उसके बाद दिल्ली में आए और अच्छा काम करके आए अपने पर।
जी हाँ, समीर रिजवी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कहा जाता है राइट हैंडेड सुरेश रैना, उनकी जो स्टाइल है, जो खेलने की स्टाइल है, और इनफैक्ट सुरेश रैना ने ही उनको नर्चर करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मेरठ से आते हैं और 2024 में 8.5 करोड़ के आसपास के कॉस्ट पे इनको खरीदा गया था और चेन्नई सुपर किंग्स में ही थे।
जी,
इनफैक्ट मैं पीछे इनका एक रिकॉर्ड देख रहा था, आज जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे थोड़ा मौका मिला देखने का, कि पिछली 4 या 5 पारियों में इन्होंने जो अपना स्कोरिंग का सिलसिला है, पिछली बार 70 रन बनाए थे, आज 90 रन बनाए, तो हर पारी में उनका जो हाईएस्ट स्कोर है उसको वो अप करते जा रहे हैं। आज अनफॉर्चुनेटली वो 90 रन पर आउट हो गया, अन्यथा वो 100 तो फुल्ली डिजर्व करते थे, लेकिन हाँ उन्होंने ये काम किया कि अपनी टीम को एक बेहतरीन जीत दिलाई और वो भी एक दिग्गज टीम के खिलाफ।
जी, वहीं कल हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा और एक अन्य मुकाबले में कल शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। दोनों ही बेहतरीन टीम रही है और लोगों को इंतजार रहता है बेंगलुरु और चेन्नई का मैच का। लेकिन अगर हम चेन्नई पे बात करें तो दो मुकाबला वो हार गए। एक दिग्गज पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी अभी डगआउट में तो मौजूद है लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं है, तो कितना अंतर पड़ता है इस बात का कि विकेट के पीछे एमएस धोनी का होना और डगआउट में होना?
बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए, कई बार ये कहा जा सकता है कागज पे कि मेंटोर के तौर पर तो वो मौजूद हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं और टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली अटैच्ड हैं, लेकिन वो धोनी जो विकेट के पीछे खड़े हुए हैं, जो कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जब बॉल अगर मान लीजिए कोई बॉलर उसकी पिटाई हो रही है वो तुरंत जाकर के उससे बात करते हैं, और चूंकि वो विकेट कीपर है तो मिड ऑफ पे तो खड़े नहीं हो सकते, तो लेकिन उनका जो मैदान पर रोल रहता है वो तो अनमैच्ड है। और धोनी का जो पिछला जो कहानियां तमाम हमने सुनी है, जो किंवदंती बन चुके हैं, वो आईपीएल में अगर सीएसके का इतिहास कभी लिखा जाएगा तो धोनी सबसे ऊपर होंगे। और एक और खिलाड़ी होंगे रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, हम सबका नाम ले चुके हैं, रविचंद्र अश्विन
जी,
लेकिन धोनी ऑफकोर्स सबसे ऊपर हैं। तो उनका मैदान में नहीं होना ऑफकोर्स चेन्नई के लिए तो नुकसानदायक है ही। पिछला सीजन भी टीम का बहुत अच्छा नहीं रहा था, इस बार उम्मीदें तो थी लेकिन शुरुआत फिलहाल तो अच्छी नहीं हो रही है।
और चर्चा कर लेते हैं महिला क्रिकेट पर भी। महिला क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में 66 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 306 रन बनाए। 307 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 240 रन ही बना सकी। मैटी ग्रीन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। मैटी ग्रीन ने नाबाद 141 रन की पारी खेली है और 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी न्यूजीलैंड ने 4-1 से अपने नाम की। चर्चा कर लेते तीरंदाजी पर। श्याम सुंदर स्वामी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में कांस्य पदक जीत लिया है। श्याम ने प्लेऑफ में पेरिस पैरालंपिक के पदक विजेता राकेश कुमार को हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत तीरंदाजी स्पर्धा के कांस्य पदक मैच में श्याम सुंदर स्वामी 10-9 से विजयी रहे। इससे पहले श्याम और राकेश ने समान 143 अंक बनाए और मुकाबले का परिणाम टाई ब्रेक से लिया गया। पेरिस पैरालंपिक्स में मिक्स्ड टीम के कांस्य पदक विजेता राकेश ने टाई ब्रेक में हार के कारण चौथे स्थान पर रहकर अपना अभियान समाप्त किया। वहीं महिला वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में अंजुम तनवार भी दक्षिण कोरिया की प्रतिद्वंदी के खिलाफ कांस्य पदक मैच में 2-6 से हारने के बाद चौथे स्थान पर रही। बैंकॉक में हाल ही में खेले गए एशिया कप के पहले चरण में भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य सहित 10 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
2025 में वर्ल्ड पैरा निशानेबाजी एशिया कप टीम स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद बैंकॉक में जो पैरा निशानेबाजी हुई थी उसमें भी स्वर्ण पदक जीता और अब कांस्य पदक, लगातार जो पदकों का सिलसिला है वो जारी है उनके लिए।
जी हाँ, दरअसल पैरा, चाहे पैरा बैडमिंटन की बात करें, पैरा ओलंपिक गेम्स की बात करें, यहां पर हम वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स हुई थी दिल्ली में और यहां आर्चरी में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा। इनफैक्ट बैंकॉक में ये जो इवेंट हुआ है यहां पर भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर के 13 मेडल। और यहां पर एक खिलाड़ी है प्रशांत जिनका जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा, पायल नाग। दरअसल शीतल देवी जो कि जिन्होंने कि पिछले ओलंपिक खेलों में भारत के लिए मेडल जीता था, उनको पायल नाग ने हराया है। और पायल नाग ने ये अपना पहला इंटरनेशनल इवेंट खेला, यहां उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते और इंडिविजुअल तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, शीतल को हराया, और डबल्स में उन्होंने शीतल के साथ ही गोल्ड मेडल जीता। इंसिडेंटली ये दोनों जो आर्चर्स हैं दोनों ही जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि ओडिशा से आती हैं पायल नाग, और दुनिया की वो पहली ऐसी आर्चर हैं जो कि प्रोस्थेटिक पैर और कंधे का इस्तेमाल करती हैं आर्चरी के लिए। तो ये दोनों, शीतल देवी और पायल नाग, दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको देख करके आपको ऐसा लगता है कि अगर आप तय कर लें कि आपको कुछ करना है तो परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, फिजिकल डिसेबिलिटी कोई मायने रखती ही नहीं है, अगर जज्बा है सब कुछ पीछे छोड़ करके आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं।
चर्चा कर लेते हैं हॉकी पर। बिहार में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कल गोवा, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश ने अपने अपने मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
डिवीजन सी में पूल बी के मुकाबले में गोवा ने राजस्थान को 7-0 से हराया। करण कुमार ने दूसरे 12वें और 44वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक लगाई। साहिल प्रमोद ने 17वें, दिलशाद अली 27वें, श्रेयस हुंडरे चांगदेव 30वें और अंकित ने 38वें मिनट में गोल किया। वहीं डिवीजन बी के मुकाबले में हॉकी उत्तराखंड ने बंगाल को 5-2 से हराया। विक्की सिंह बोहरा ने 2 गोल करके उत्तराखंड को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद गोविंद सिंह ने भी 2 गोल किए। हॉकी बंगाल की ओर से कप्तान रिजू बार और सुजल तुरी ने गोल किए। डिवीजन बी के एक अन्य मुकाबले में हॉकी अरुणाचल ने बिहार को 4-2 से हराया। हॉकी अरुणाचल के लिए शुभम राजभर, दीपक राव, रमन सिंह और मोहित यादव ने गोल किए, जबकि हॉकी बिहार के लिए सुमन कुमार और कप्तान अभय शाह ने गोल दागे। पूल ए में हॉकी पंजाब, हॉकी चंडीगढ़ और हॉकी महाराष्ट्र शामिल हैं। पूल बी में हॉकी झारखंड, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हॉकी और हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को रखा गया है। पूल सी में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मणिपुर हॉकी शामिल हैं, जबकि पूल डी में मध्य प्रदेश, हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा और केरल हॉकी शामिल हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
पहली बार अलग अलग डिवीजन में बांटा गया, ए बी सी और प्रमोशन और रिलीगेशन भी लगाया गया, तो एक रोमांच बना है हॉकी में।
ये जो फॉर्मेट है दरअसल ये एक, जैसे आप कह रहे हैं, रोमांच है, एक्साइटमेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ ये टीमों में एक कॉम्पिटिशन की जो फीलिंग है उसको आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रशांत। बिकॉज अगर हम कोई भी टीम अगर अच्छा नहीं करेगी तो वो रिलीगेशन, जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं चाहता कि वो नीचे के डिवीजन में चले जाएं। आप प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं तो आप चैंपियनशिप खेलने के लिए चले जाएं, या आप अगर इलीट, जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो प्लेट ग्रुप में चले जाएं, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस लेवल पर, यानी जूनियर सब जूनियर लेवल पर भी टूर्नामेंट हॉकी में रेगुलर हो रहे हैं और व्यवस्थित अंदाज में उनका आयोजन किया जा रहा है, जो एक बडिंग टैलेंट है हमारी, जो दूसरी पौध है हॉकी की, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है और यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है।
बात कर लेते हैं फुटबॉल पर। मालदीव में सैफ पुरुष अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल भारत उपविजेता रहा। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को पेनाल्टी शूटआउट में 3-4 गोल से हराया। बांग्लादेश का यह दूसरा अंडर 20 सैफ खिताब है। पहले भी ड्रॉ खेला था उन्होंने, उसके बाद कल उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जीत नहीं पाया भारत।
जी हाँ, ये वही है, सो नियर येट सो फार वाली कहानी है। हालांकि कई बार फुटबॉल में हम लोग बात करते हैं, भारत की फीफा रैंकिंग की बात करते हैं, यहां पर वो अंडर 20 टीम है, वो खेल रही थी और कुछ मुकाबले अच्छे खेले थे भारत ने, लेकिन खिताबी मामले में आ करके और खासतौर पे पेनल्टी शूट आउट में लूज करना, ये बड़ा बड़ा पेनफुल होता है। और यहां पर वैसे देखने में आपको तो ऐसा लगेगा कि पेनल्टी जब मैं लेने जा रहा हूं तो इतना बड़ा गोल है मेरे सामने और एकमात्र गोलकीपर खड़ा है, लेकिन जब वहां पर पेनल्टी मिस होती है और जब गोलकीपर या बचा लेता है, तो वो कोई तो जीरो से हीरो बन जाता है, कोई हीरो से जीरो बन जाता है। तो यहां पर भारत के लिहाज से थोड़ा अनफॉर्चुनेट मैं कह सकता हूं, टाइटल राउंड तक पहुंचे लेकिन खिताब फिसल गया।
बात कर लेते ट्राइबल गेम्स पर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण में कर्नाटक ने सर्वाधिक 23 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, वहीं ओडिशा ने सबसे अधिक 57 पदक जीते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक के लिए 2 लाख रूपये, रजत के लिए 1.5 लाख रूपये और कांस्य के लिए 1 लाख रूपये प्रदान किए जाएंगे। वहीं टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण के लिए 1 लाख रूपये, रजत के लिए 75,000 रूपये और कांस्य के लिए 50,000 रूपये देने की घोषणा की गई। प्रतियोगिता में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3,800 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में हिस्सा लिया। एक अनूठा पहल था। और जैसे पैरा गेम्स की बात करते हैं, ट्राइबल गेम्स की हम लोग बात करते हैं, ब्लाइंड क्रिकेट की हम लोग बात करते हैं, उसमें एक नया ये भी नाम जोड़ देना सही होगा।
जी, ये एक अच्छी बात है। और इसमें एक और आइसिंग ऑन द केक प्रशांत ये है कि ऐलान ये हुआ है कि ये हर साल होंगे गेम और छत्तीसगढ़ में ही होंगे, ऐसा अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो सुनने में आया था। तो ये एक बहुत हार्टनिंग फैक्टर है कि कंटिन्यूअस ये प्रोसेस रहना चाहिए, जिसमें कि देश के कोने कोने से जो खिलाड़ी आते हैं और ट्राइबल गेम्स में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, कैश अवार्ड एक इंसेंटिव है, अगर उसके साथ साथ ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी है, जो यहां पर गोल्ड मेडल या सिल्वर या ब्रॉन्ज जीत रहे हैं, उनको अगर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मिले वो और ज्यादा बेहतर होगा भारत के लिहाज से।
जी, और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि राजस्थान ने 14 ओवर समाप्त होने पर 3 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। सिमरन हेटमायर अभी भी खेल रहे हैं और उनके साथ ध्रुव जुरेल उनका साथ निभा रहे हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। शिवेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
थैंक यू प्रशांत।
इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।